ओम शांति। आज का टॉपिक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, अपनी कमजोरियों को खत्म करने की यथार्थ विधि। आज से हम हर संडे को जो व्यक्त मिलती है उस पर गहराई से चिंतन करेंगे। अभी भी जो आज की मुद्री थी उसमें से एक विशेष पॉइंट कि अपनी कमजोरियों को खत्म करने की यथार्थ विधि क्या है। इससे फायदा क्या होगा आपको समझ में आएगा कि विचार सागर मंथन कैसे करना है, राइट? कि विचार सागर मंथन बहुत बहुत जरूरी है। एक मिनट हम अपने स्वरूप को देखेंगे, एक मिनट के लिए हल्के हो जाएंगे। अपने मस्तक में चमकते हुए प्रकाश को देखेंगे। कोई भी कार्य शुरू करने से पहले अपने स्वरूप में हमें टिकना है। चलिए अब हम चलते हैं कि अपनी कमजोरियों को खत्म करने की यथार्थ विधि क्या है। बाबा ने क्या कहा पहले उसको सुनते हैं और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बाबा ने कहा, बाप दादा ने रिजल्ट में देखा, बाप दादा ने रिजल्ट में देखा। आपको आवाज क्लियर आ रही है? फिर हम आगे शुरू करते हैं। क्या आवाज क्लियर है? यस, आवाज क्लियर है आपको? ठीक है, ओके। चलिए अभी टाइप करना छोड़कर और हम चलते हैं टॉपिक पर। ध्यान से सुनेंगे, आज की जो क्लास है बहुत गहरी होगी
और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आपको ये समझ में आ गई तो हमारे वो संस्कार जो हम परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं कई सालों से, वो परिवर्तन हो जाएंगे, क्योंकि बाबा ने जो विधि बताई है बहुत ही वंडरफुल है, इसलिए पूरी तरह से एकाग्र हो जाएं। कोशिश करें, टाइप तभी करें जब कहा जाए। अभी आ गया है कि यस, आवाज आ गई है, अभी टाइप करना बंद करें। थैंक यू। अब चलते हैं, बहुत गहरे में चलेंगे, इसीलिए मन और बुद्धि को एकाग्र कर लें। अगर वो इधर उधर भटकी हुई है, एकाग्र कर लें उसको। सुनने से पहले ही प्रतिज्ञा कर लें मन ही मन में कि मुझे आज जो भी सुनने को मिलेगा, मैं आत्मा सिर्फ सुनूंगी नहीं, दिल से उसे स्वीकार कर कर परिवर्तन करूंगी। चलिए, अभी कोई भी टाइप ना करे प्लीज। बाप दादा ने रिजल्ट में देखा, बहुत करके जो पुरुषार्थ में अपने प्रति संस्कार परिवर्तन के प्रति समय देते हैं। फिर से सुने, बाप दादा ने रिजल्ट में देखा, बहुत करके जो पुरुषार्थ में अपने प्रति संस्कार परिवर्तन के प्रति समय देते हैं, चाहे 50 वर्ष हो गए हैं, चाहे एक मास हुआ है, भगवान सुना रहा है, इस स्मृति से सुनना है, ध्यान से सुने, चाहे 50 वर्ष हो गए हैं, चाहे एक मास हुआ है, लेकिन आदि से अब तक परिवर्तन करने का संस्कार मूल रूप में वही होता है, एक ही होता है, और वही मूल संस्कार भिन्न भिन्न रूप में समस्या बनकर आता है। बाबा ने क्या कहा, चाहे 50 वर्ष हो गए हैं ज्ञान में, चाहे एक वर्ष हुआ है, एक मास हुआ है, लेकिन आदि से अब तक परिवर्तन करने का संस्कार मूल रूप में वही होता है, एक ही होता है, और वही मूल संस्कार भिन्न भिन्न रूप में समस्या बनकर आता है। फिर एग्जाम्पल दिया, मानव दृष्टांत के रूप में किसका बुद्धि के अभिमान का संस्कार है, किसी का घृणा भाव का संस्कार है, व किसी का दिल शिकस्त होने का संस्कार है। ये संस्कार बहुत आत्माओं में है, दिल शिकस्त हो जाते हैं, या किसी का क्रोध करने का संस्कार, और क्या हो सकते हैं, बाबा ने तो ये तीन कहे, क्रोध करने का संस्कार हो सकता है, दुखी होने का संस्कार हो सकता है, चिंता करने का संस्कार हो सकता है। संस्कार वही, ध्यान से सुने इस बात को, फिर हम विचार सागर मंथन करेंगे इस पे और आज इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। आज इस सेशन में हम एक ही बात करेंगे, वो क्या, अपनी कमजोरियों को जड़ से खत्म कैसे कर दें। संस्कार वही, आदि से अब तक भिन्न भिन्न समय पर इमर्ज होता रहता है। किसी आत्मा में मान लीजिए दुखी होने का संस्कार है, तो क्या होता है कि उसको सही किया थोड़ा सा, फिर एक महीने बाद आ गया, फिर 10 दिन के बाद आ गया। चाहे 50 वर्ष लगा है, चाहे 1 वर्ष लगा है, इस कारण उस मूल संस्कार को जो समय प्रति समय भिन्न भिन्न रूप में समस्या बनकर आता है, उसमें समय भी बहुत लगाया है और शक्ति भी बहुत लगाई है परिवर्तन करने में। आप भी चेक करें कि कोई ऐसा संस्कार जिसमें बहुत समय भी लगाया है, शक्ति भी बहुत लगाई है, लेकिन फिर भी परिवर्तन नहीं हुआ है। हर किसी का ऐसा कोई संस्कार जरूर होता है जो बहुत कड़ा होता है, परिवर्तन करना चाहते हुए भी परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। टेम्परेरी परिवर्तन होता है, लेकिन फिर दोबारा से वो वापस आ जाता है। शक्ति भी लगाते हैं उसमें, समय भी लगाते हैं परिवर्तन करने में। अब ध्यान से सुने, कैसे इस कमजोरी को परिवर्तन करें। तो पहले, उससे पहले क्या करना होगा, सिर्फ 1 मिनट के लिए बैठें, कोई भी टाइप मत करें, 1 मिनट के लिए अपने आप से बात करें कि मेरे अंदर कौन सा ऐसा संस्कार है जो मुझे कई सालों से परेशान कर रहा है, जो बार बार आकर परेशान करता है। कोई भी टाइप नहीं करेगा, सिर्फ अपने आप से बात करें, उस संस्कार को आइडेंटिफाई करें। चाहे वो दुखी होने का हो सकता है, परेशान होने का हो सकता है, उदास होने का हो सकता है, चेक करें। और उसका रीजन ढूंढने की कोशिश करें, क्या ऐसा कारण है जो ये संस्कार परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। क्योंकि आज की मुरली ने, बाबा ने ऐसी विधि बताई है कि आपका संस्कार, आपकी कमजोरी सदा के लिए भाग जाएगी। ऐसा महामंत्र दिया है बाबा ने। सोचें क्यों परिवर्तन नहीं हो पाता है संस्कार। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की क्लासेस में हमें धैर्य से ठहरना है, खुद से बात करनी है। क्योंकि जब तक ठहरेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे खुद से, चेकिंग नहीं करेंगे, परिवर्तन नहीं होगा। ठहर जाएं, धैर्य रखें, पूछें अपने आप से। क्यों परिवर्तन नहीं हो पा रहा है संस्कार। चलिए अब हम, आप लिखें कौन सा ऐसा संस्कार है जो कड़ा है और क्या रीजन है परिवर्तन ना होने का, बताएं। आज अभी हम मुरली रिवाइज ही कर रहे हैं, एक मुरली में से पॉइंट लिया है हमने। हर संडे को मुरली में से ही, जो व्यक्त मुरली होगी उसी में से ही पॉइंट लेंगे। हीना बहन ने लिखा है, आलस्य और अलबेलेपन के कारण संस्कार परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। दूसरों से खुद को कंपेयर करना, ईगो, ईर्ष्या, लेजीनेस, आलस्य, इरिटेट होना। कल बाबा ने कहा ना, कई बच्चे घड़ी घड़ी के घड़ियाल हैं, कि अभी एकदम से खुश हैं बहुत और एकदम से उनको पता नहीं क्या हो जाता है, डिस्टर्ब, रिएक्ट, लेजीनेस, फियर, लोनलीनेस, अकेलापन। हर बात में परफेक्शन चाहिए, जिससे दुख होता है। ओवरथिंकिंग, दूसरों के व्यवहार, दूसरों की बातें, क्या सोच रहे हैं, सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। क्रोध, इरिटेशन, परेशान, बहानेबाजी, रिएक्ट करना, खुद पर विश्वास नहीं होना, दृढ़ता नहीं होना, लाउड और एक्स्ट्रा बोलना, ठीक है, दिल शिकस्त होना, पास लगाव झुकाव, जल्दी रिएक्ट करना। हाँ, एक बहन ने बोला सीट में सेट नहीं होने की वजह से, मंजुनाथ जी ने बोला है, फीलिंग रीजन, कोई अपना नहीं मानता है कहना, व्यर्थ। अभी बहुत सारे आंसर आ रहे हैं, सुबह जल्दी ना उठ पाना, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. ठीक है, आपकी बात समझ में आई. परिवर्तन ना होने का कारण क्या है, इसको ध्यान से समझेंगे. आज अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे और इंप्लीमेंट करेंगे, आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा. दृष्टि दोष, फीलिंग की भावना, फीलिंग देवी, बाबा जिसको कहते हैं ना, फीलिंग देवी, छुई मुई, जल्दी से फील कर, किसी ने कुछ कहा और दुखी, थोड़ा सा कुछ कहा जैसे छुई हुई होती है ना, थोड़ा सा टच किया तो वो शर्मा जाती है. मुझे लगता है सामने वाला मुझे गलत समझ रहा है, ये फील होता है. कई बार हम खुद ही जजमेंट्स क्रिएट करते हैं. यस, अकेलापन. देखिए कई बार क्या होता है कि हम खुद ही सोच रहे होते हैं बहुत सारी चीजें, कि इसने ये बोला है, इस भाव से बोला है, ये सोच रहा होगा मेरे बारे में ऐसा कुछ, और हम परेशान होते हैं. ये बहुत बड़ा कारण है व्यर्थ का. लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं. मुझे भी पहले ये होता था, पर अभी बहुत ही सुंदर अनुभव होता है. वो क्या, अंदर एक चीज बैठ गई है. कई बार क्या होता है कि हमारे बारे में किसी ने किसी को गलत बोला, बड़ों को गलत बोला, सीनियर्स को गलत बोला, तो पहले होता था कि कहीं मेरे बारे में गलत ना बोल दे, दूसरे क्या सोचेंगे. लेकिन एक दृढ़ता अंदर आ गई है जब से बाबा से बिल्कुल सच्चे हो गए हैं अंदर से, तो लगता है कि मुझे पता है मैं सही हूं. क्या मैं सही हूं? यस, अपनी चेकिंग करें पहले. मुझे पता है मैं सही हूं, बाबा को पता है मैं सही हूं, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. सत्यता को डरने की जरूरत नहीं है. मैं सत्य हूं तो मुझे घबराने की जरूरत नहीं है कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं. दूसरे मेरे बारे में, और एक और थॉट क्रिएट करते हैं हम, मेरे बारे में तो सब अच्छा ही सोचेंगे. इसके बहुत वंडरफुल रिजल्ट. डर के संस्कार, अटेंशन नहीं देना, दूसरों को अभी भी चेंज करने में लगे हैं, अनुमान लगाना. यस, लोग मेरे बारे में गलत फैलाते हैं तब डिस्टर्ब होते हैं. फैलाने दीजिए, आप सही हैं, आपके वाइब्रेशन अच्छे हैं. वो गलत फैला रहे होंगे, सुनने वाला कहेगा नहीं, वो गलत नहीं हो सकते हैं. ऐसा आपका भी अनुभव होगा कुछ लोगों के बारे में. कोई आकर कहे कि आपको पता है इसने मेरे को झूठ बोला, आप कहेंगे नहीं, ये व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता. तो हमें खुद को ऐसा बनाना है. फीलिंग होती है देह अभिमान, भूल जाते हैं कि मैं कौन, मेरा कौन. चलिए अब हम सॉल्यूशन पर आते हैं. ये तो समझ में आया, आपने ये चेकिंग करी, बहुत अच्छी चेकिंग करी. यही विचार सागर मंथन करना है. विचार सागर मंथन कुछ ऐसा नहीं है कि क्या क्या किया पता नहीं. विचार सागर मंथन का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारी स्टोरीज, बहुत सारी कहानियां हमने कहीं पढ़ी, कहीं से हमने कुछ पॉइंट्स लिए. नहीं, विचार सागर मंथन मींस खुद ऑब्जर्व करना, चेक करना जो बाबा बोलते जाएं. देखिए अब इसका सॉल्यूशन आपके सामने आने वाला है. पहले मुरली से पढ़ते हैं, फिर हम उसकी गहराई में जाएंगे, समझेंगे सॉल्यूशन क्या है. अभी तक बहुत शक्तियां गवाई हैं, एक कोई ऐसी कमजोरी है जो परिवर्तन नहीं हुई है. अब शक्तिशाली संस्कार, एक ही सॉल्यूशन है. लेकिन किसको समझ में आएगा, हम जितने भी यहां जुड़े हैं लगभग 600 के आसपास हैं, और भी बहुत सुनेंगे. 50% से ज्यादा आत्माओं को जो सॉल्यूशन मिलने वाला है समझ में नहीं आएगा. क्यों समझ में नहीं आएगा? क्योंकि ये गहरा है बहुत पॉइंट. और अगर हम इसको सिर्फ वैसी समझने की कोशिश करेंगे बिना गहराई में, लगेगा कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता है. इसलिए ध्यान से सुने, जिसकी एकाग्रता होगी वही इसको समझ पाएगा. क्या करो, सॉल्यूशन क्या है? चलिए सॉल्यूशन पर आते हैं हम। मन और बुद्धि को एकाग्र कर लें। अब क्या सॉल्यूशन है? अब शक्तिशाली संस्कार, दाता, विधाता, वरदाता का इमर्ज करो। दाता, विधाता, वरदाता का इमर्ज करो। तो यह महासंस्कार, यह महासंस्कार कमजोर संस्कार को स्वतः समाप्त कर देगा। ध्यान से इस बात को सुने, समझे। यह महासंस्कार, कौन सा महासंस्कार? दाता, दातापन के संस्कार को धारण करो। दाता, विधाता, वरदाता। तो यह महासंस्कार कमजोर संस्कार को स्वतः समाप्त कर देगा। जब आप शक्तिशाली स्थिति में स्थित हो जाएंगे, कमजोर चीजें स्वतः समाप्त हो जाएंगी। जब सूर्य की तरह आप चमकने लगेंगे तो अंधेरा स्वतः ही खत्म हो जाएगा। अभी संस्कार को मारने में समय नहीं लगाओ। लक्ष्मी बहन ने लिखा है, भाई जी ज्ञान में आने से पहले हमारे संस्कार अलग थे, तो अब सबको लगता है कि हम अच्छे बनने का नाटक कर रहे हैं। उन्हें लगने दीजिए ना। देखिए, अपने जीवन को किसी दूसरे को इम्प्रेस करने में खत्म नहीं करना है। इस बात को अच्छे से समझ लें। आपको खुद पता होना चाहिए कि आप कौन हो। दूसरों को इम्प्रेस करने में, दूसरों को प्रूव करने में हमें अपने अमूल्य समय को वेस्ट नहीं करना है। इस दुनिया में बहुत सी आत्माओं ने अपना जीवन वेस्ट कर दिया है दूसरों को इम्प्रेस करने में, शो ऑफ करने में, दिखावे में। आज के जो लोग हैं अपना सारी ऊर्जा, मैक्सिमम ऊर्जा वेस्ट कर रहे हैं इसी में ही, दूसरों को इम्प्रेस करने में। तो इसलिए आप कौन है आपको पता है, आपको किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो यह महासंस्कार फिर से सुनेंगे। एक ही लाइन को जब आप धैर्य से बार बार पढ़ेंगे, अंदर जाएगी वो सबकॉन्शियस माइंड में। नहीं तो क्या है, मुरली पढ़ दी, हाँ बहुत अच्छी मुरली थी, एक दो घंटे उसका इफेक्ट रहा और फिर दोबारा से खत्म। धैर्य रखना होगा। इस पॉइंट को कौन समझ पाएगा? क्यों हमने कहा कि काफी सारी आत्माएं 50% से भी ज्यादा नहीं समझ पाएंगी? उसका रीजन ये नहीं है कि कोई नेगेटिव थॉट है ये, नहीं। धैर्य बहुत कम आत्माओं में है, सत्य है, रियलिटी है ये। अगर आप सब धैर्य है आपके अंदर तो आप जरूर समझ पाएंगे इस बात को। हम तो चाहते हैं कि आप सब समझें, परंतु धैर्य से सुनना पड़ेगा। एक ही पॉइंट को बार 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 सुनना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। फिर से सुनते हैं। अभी संस्कार को मारने में समय नहीं लगाओ, ये ध्यान रखना है। चेक करें कहीं हम संस्कारों को मारने में समय तो नहीं लगा रहे। बार बार क्रोध नहीं करना, आज मैं क्रोध नहीं करूंगी, प्रतिज्ञा तो करनी है, परंतु उसके साथ साथ दूसरे संस्कार धारण करने पड़ेंगे। नहीं तो अगर सिर्फ हम प्रतिज्ञा करेंगे, देखो आज बाबा ने बहुत गहरी बात कही ना, कि अगर हम सिर्फ संस्कार को परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे, सिर्फ संस्कार को परिवर्तन करने की, तो वो नहीं होगी। लेकिन कब होगी वो? जब हम संस्कार को परिवर्तन करने के साथ साथ, प्रतिज्ञा करने के साथ साथ कुछ नई चीज, नया धारण करेंगे, उससे बड़ा संस्कार धारण करेंगे। तो आज की मुरली में बाबा ने यही कहा, अभी संस्कार को मारने में समय नहीं लगाओ। यह महासंस्कार, कौन सा महासंस्कार? दाता, विधाता, वरदाता का इमर्ज करो। वरदानी आत्मा हूं मैं। कोई इस स्वमान को स्वीकार कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। जिसके अवचेतन मन ने इस संस्कार को, इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, बस उसके कमजोर संस्कार स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। तो उसे क्या करना है? बार बार एकांत में बैठकर, एकांत में बैठकर मनन करना है। लेकिन सेवा के फल से, फल की शक्ति से स्वतः ही मर जाएगा। जैसे अनुभव भी है कि अच्छी स्थिति से जब सेवा में बिजी रहते हो तो सेवा की खुशी से उस समय तक समस्याएं स्वतः ही दब जाती हैं, क्योंकि समस्याओं को सोचने की फुर्सत ही नहीं। हर सेकंड, फिर से सुने, हर सेकंड, हर संकल्प सेवा में बिजी रहेंगे तो समस्याओं का लंगर उठ जाएगा, किनारा हो जाएगा। हर सेकंड, हर संकल्प सेवा में बिजी रहेंगे तो समस्याओं का लंगर उठ जाएगा। जब सेवा की बात हो रही है तो ज्यादातर आत्माएं सेवा किसको समझती हैं? स्थूल सेवा को। नहीं, वो कहते हैं हम तो घर पे हैं, हम कैसे सेवा करें। सेवा ध्यान से समझें, स्थूल सेवा अगर आप कर रहे हैं लेकिन अंदर से दुखी हैं, अंदर से परेशान हैं, 10 घंटे भी आप सेवा कर रहे हैं उसका कोई ज्यादा जमा नहीं होने वाला है। ध्यान से समझे, किस भाव से, महत्व सेवा का नहीं है, सेवा भाव का है। किस स्थिति में, किस वाइब्रेशंस में। मान लीजिए हम क्लास करा रहे हैं, बहुत सारी क्लासेस करा रहे हैं, परंतु अगर मेरी स्थिति अच्छी नहीं है, अगर मेरा मन शांत नहीं है, क्या इसका रिजल्ट मिलेगा? नहीं, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। मान लीजिए किसी को अहंकार हो कि ये मैं क्लासेस करा रहा हूं, तो क्या उसको रिजल्ट मिलेगा? नहीं। अगर इंस्ट्रूमेंट समझ कर करेंगे तो खुशी बढ़ेगी, नहीं तो अंदर अंदर डर, चिंता, ये सब शुरू हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा, हर सेकंड, हर संकल्प सेवा में बिजी रहेंगे तो समस्याओं का लंगर उठ जाएगा, किनारा हो जाएगा। आप औरों को रास्ता दिखाने के, बाप का खजाना देने के निमित्त सहारा बनो तो कमजोरियों का किनारा स्वतः ही हो जाएगा। बाप का खजाना देने के निमित्त बनो, कैसे होगा कमजोरियों का किनारा? बाप का खजाना देने के निमित्त सहारा बनो तो कमजोरियों का किनारा स्वतः ही हो जाएगा। चाहे दृष्टि से दो, अब बाबा ने कहा कैसे देना है खजाना, चाहे दृष्टि से दो, चाहे वृत्ति से दो, चाहे वाणी से दो, चाहे संग से दो, चाहे वाइब्रेशन से दो, लेकिन देना ही है। अपने देने के स्वरूप में टिक जाएं, प्यार, मेरे दिल में हर आत्मा के लिए प्यार है। भक्ति में भी नियम है, भक्ति में क्या नियम है कि जो वस्तु कम होती है उसको पाने के लिए आपको चाहिए तो क्या है, दान, कहते हैं दान करो, जो दान करेंगे वो बढ़ेगी। स्वीता बहन ने कहा है, सीट पर सेट रहकर शुभ भावना के, शांति स्नेह के वाइब्रेशन फैलाते रहे तो होगा ना? यस, यही असली वृत्ति, मतलब प्लीज बताएं। देखिए, जो चीज हम बार बार सोचते हैं, स्मृति, स्मृति होती है जो बार बार सोचते हैं ना, स्मृति, बाबा कहते हैं स्मृति में लाओ कि तुम कौन थे, तो स्मृति है ये। जो हम बार बार सोचते जाते हैं हमारे चारों ओर एक कोरा बन जाता है ना, वृत्ति। वृत्ति मीन्स वृत्त वर्ड से आया है, वृत्त मीन्स सर्कल, वृत्त एक हिंदी वर्ड है, सर्कल, हमारे चारों ओर एक सर्कल बन जाता है जिस प्रकार के विचार हमारे क्रिएट होते हैं। और फिर उससे वाइब्रेशंस बनते हैं, वृत्ति से वाइब्रेशन बनते हैं। तो देना ही लेना है, ये समझ में आया आपको? बहुत ही सुंदर है। बाबा ने कहा अभी अपने संस्कार परिवर्तन में समय नहीं लगाओ, अभी अपने संस्कार परिवर्तन में समय नहीं लगाओ, विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना से श्रेष्ठ कामना के संस्कार इमर्ज करो, इस श्रेष्ठ संस्कार परिवर्तन में समय नहीं गवाओ, इस श्रेष्ठ संस्कार के आगे, कौन से संस्कार के? बाप समान विश्व कल्याण, इस श्रेष्ठ संस्कार के आगे हद के संस्कार स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। अब युद्ध में समय नहीं गवाओ, विजयीपन के संस्कार इमर्ज करो, चाहे मनसा करो, चाहे वाचा करो, चाहे कर्मणा करो, लेकिन सेवा के सिवाय और कोई समस्या में नहीं जाओ। दान दो, वरदान दो, तो स्व का ग्रहण स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। समय कम है और सेवा आत्माओं की, किस किस की सेवा करनी है? आत्माओं की, वायुमंडल की, प्रकृति की, भूत प्रेत आत्माओं की, सबकी करनी है। उन भटकती हुई आत्माओं को भी ठिकाना देना है। विधाता बनो, वरदाता बनो। 4 घंटे 6 घंटे के सेवाधारी नहीं, अभी विश्व कल्याणकारी स्टेज पर सेट हो जाओ, सीट पर सेट हो जाओ। हर घड़ी विश्व कल्याण प्रति समर्पित करो, विश्व कल्याण में स्व कल्याण समाया हुआ है। जब संकल्प और सेकंड सेवा में बिजी रहेंगे, फुर्सत नहीं होगी माया को भी आपके पास आने की, फुर्सत नहीं होगी। इन सब के लिए क्या करना पड़ेगा? इन सब के लिए क्या करना पड़ेगा? रहम दिल के संस्कार धारण करने पड़ेंगे। चलिए अब इसको बहुत सिंप्लीफाई करते हैं। जो हमने अभी आज की मुरली में सुना कि कमजोरी को खत्म करने का तरीका, बाबा ने कहा कि चाहे वो 50 साल का है, 1 मास का है, परंतु परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं कुछ कमजोरियों को, बार बार वो कमजोरी आ जाती है, तो उसके लिए क्या करना है? एक तो है कि एक एक कमजोरी से लड़ाई करें, दूसरा है सीधा छलांग मारकर उड़कर ऊंची स्थिति में स्थित हो जाएं। जब हम ऊंची स्थिति में स्थित हो जाएंगे, सीट पर सेट हो जाएंगे, जैसे पहाड़ पर, मान लीजिए हम पहाड़ की चोटी पर चले जाएं, तो नीचे की सब बातें हमें क्या लगेंगी? छोटी लगेंगी। एरोप्लेन पे होंगे तो नीचे की सब बातें चींटी के समान लगेंगी। तो ऐसे ही सॉल्यूशन इसका सिंपल है, सीट पर सेट हो जाएं, ऊंची सीट पर। ऊंची सीट कौन सी है? मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, रहम दिल आत्मा हूं, इस सीट पर सेट हो जाए। मुझे हर सेकंड, हर संकल्प अपने स्वरूप में रहना है, और एक्चुअल में अपने स्वरूप में रहना ही देना है, क्योंकि जिस स्वरूप में मैं आत्मा रहती हूं, मुझसे वो वाइब्रेशन फैलते हैं। आज बाबा ने कहा फरिश्ता और देवता स्वरूप में रहो तो आपके वाइब्रेशन से दूसरों को साक्षात्कार होगा। विश्व कल्याणकारी, जैसे दुनिया में मान लीजिए किसी को एक पोस्ट मिल जाती है, सीट मिल जाती है, कितना नशा चढ़ जाता है उसको। मान लीजिए कोई सीएम बन गया, चीफ मिनिस्टर बन गया, उसको नशा चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा, बताइए? मान लीजिए कोई चीफ मिनिस्टर, मान लीजिए आपको ही चीफ मिनिस्टर बना दें आपकी स्टेट का, तो आपको नशा चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा, क्या लगता है आपको? सोच के देखिए, आपको सीएम बना दिया जाए आप स्टेट का, जिस स्टेट में आप हैं, आपको नशा चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा? नशा चढ़ेगा ही। हो सकता है आप कहें कि नहीं, मुझे सीएम नहीं बनना है, कांटों की वो कुर्सी है, पर कोई भी आत्मा मान लीजिए उसको ये मिल जाए तो नशा तो चढ़ेगा ही उसको, राइट। हुआ क्या, जैसे ही सीट मिली, चाहे वो हद की सीट थी, किसी को सीएम की, किसी को पीएम की, किसी को प्रेसिडेंट की, किसी को इंचार्ज की, कुछ भी सीट मिल गई, जैसे ही सीट मिलती है ना, तो स्वमान साथ अपने आप आ जाता है। सीट के साथ स्वमान, स्वमान के साथ नशा अपने आप आ जाता है। हमें बाबा ने कौन सी सीट दी है, बस उस सीट पर सेट होना है हमें। जैसे कोई सीएम बना तो क्या वो सोचेगा कि अरे आज भी मैं सीएम हूं, कल भी सीएम हूं, परसों भी सीएम हूं, मैं तो बोर हो गया? नहीं, ऐसे ही मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, आपका मेन कर्तव्य यही है, विश्व कल्याणकारी हूं। अब इस पे जितना आप विचार सागर मंथन करेंगे, जितना आत्मिक स्वरूप में स्थित रहेंगे, जितना आप फिजिकल लेवल से ऊपर उठेंगे, क्योंकि जैसे ही फिजिकल लेवल से आप ऊपर उठेंगे, आत्माओं से कनेक्शन जुड़ेगा, आपके दिल में उन आत्माओं के लिए प्यार आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आत्मा आत्मा से कनेक्टेड है। हम सब परमात्मा की संतान, आत्मा आत्मा भाई भाई है। आपको प्यार उत्पन्न होगा, लेकिन कब उत्पन्न होगा, जब आप अपनी सीट पर सेट हैं, स्वरूप में टिके हुए हैं। रहम दिल, बहुत दुखी हैं आत्माएं, बहुत परेशान हैं। आपको लगता है ऐसा? दुनिया को देखें अगर हम, कितनी दुखी हैं, कितनी परेशान हैं, हर कोई परेशान है। बाप भी परेशान है, माँ भी परेशान है, पति पत्नी बच्चे दोस्त सब परेशान है, सब दुखी हैं। कोई एक्टर है, कोई म्यूजिक में है, किसी के पास पैसा नहीं है वो परेशान है, जिसके पास बहुत पैसा है वो भी परेशान है, आपस में कंपैरिजन इतना है, जेलसी इतनी है, सब कुछ पाकर भी उन्हें लगता है कि कुछ भी नहीं है। यस और नो, क्या आपको ये सब चीजें फील होती हैं कि बहुत दुख है दुनिया में, बहुत परेशान है आत्माएं? क्या लगता है आपको, कितना दुख है, कितने विकार है? जिसके पास सब कुछ है, पैसा है, नेम फेम सब कुछ है, उसके अंदर भी डर है, क्योंकि आपस में जेलसी है, सब स्वार्थी हैं। पैसा जब तक है उनके साथ हैं, जब पैसा नहीं है तो बात ही नहीं करते हैं उनसे। जब तक नेम फेम है लाखों लोग उनके पीछे हैं, नेम फेम खत्म कोई भी उनके साथ बात भी नहीं करता है। ये आप सबने देखा है आसपास, उसको समझें, रियलाइज करें, बहुत दुखी है आत्माएं, स्वार्थ भरा हुआ है, विकार भरे हुए हैं, दुख अशांति डिस्टर्बेंस भरी हुई है, लोभ भरा हुआ है। तो एक तरीका है कि हम सबसे नफरत करना शुरू कर दें, इस पूरी दुनिया से नफरत करना शुरू कर दें। एक तरीका ये है, यस बिल्कुल, दिल से ऐसा लगता है कि सब कुछ बदल जाए, खत्म हो जाए, सब कुछ परिवर्तन हो जाए, राइट। तो एक तरीका है कि हम परेशान हो जाएं, दुखी हो जाएं, घृणा भाव उत्पन्न कर लें सब आत्माओं के प्रति, है ना। ये तो बहुत इजी है कि देखो सारे ही लोग परेशान हैं, पता नहीं कैसे कैसे हैं, इतनी खराब दुनिया है। एक तो घृणा भाव उत्पन्न हो जाए, और दूसरा है रहम दिल भाव। घृणा और रहम दोनों ऑपोजिट है। किसी की गलती को देखकर, कोई विकारों को देखकर, गलत बातों को देखकर, कोई गुस्सा कर रहा है उसको देखकर आपको घृणा भी आ सकती है, रहम भी आ सकता है। घृणा आएगी तो आपकी स्थिति नीचे, रहम आएगा तो आपकी स्थिति ऊपर। घृणा से कोई सॉल्यूशन निकलने वाला नहीं है, और रहम होगा तो आपके वाइब्रेशंस परिवर्तन करेंगे। तो आपको क्या करना है, रहम दिल, साक्षी होकर, साक्षी और साथी वर्ड याद रखना है हमेशा। जब भी दुनिया को आप देख रहे हैं, साक्षी और साथी दो वर्ड, भगवान के साथ साक्षी होकर, जैसे भगवान साक्षी होकर देखता है हर पार्ट को, हर आत्मा के पार्ट को, हर ड्रामा के सीन को, वो कभी गुस्सा नहीं होता, वो कभी डिस्टर्ब नहीं होता, उसके अंदर कभी घृणा नहीं आती, रहम आता है। कितनी परेशान है दुनिया, क्यों परेशान है? असली में ये इनका असली स्वरूप नहीं है। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में फंसी हुई है आत्माएं, उनका असली स्वरूप नहीं है। परंतु आपके कारण, मेरे कारण, हम सबके कारण वो अभी भी फंसी हुई हैं। अगर हम अपने सूक्ष्म विकारों को खत्म कर दें, उनके अंदर के विकार भी खत्म हो जाएंगे। तो रहम आना चाहिए। अलबेलापन, आलस्यपन ऐसे ही खत्म होगा कि अगर आप आत्मा, आप जो सुन रहे हैं, आप खुद को परिवर्तन करते हैं, आपके साथ हजारों लाखों आत्माएं परिवर्तन होंगी आपके वाइब्रेशन से। इतनी बड़ी जिम्मेवारी है आप पर। कुछ आत्माएं जो अपवित्र हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, उसका रीजन है आप। कैसे आप? जहान के नूर हैं आप। बाबा कहते हैं आप जहान के नूर हैं, हम सब जहान के नूर हैं। जब तक हमारे अंदर परिवर्तन नहीं होगा, तब तक विश्व परिवर्तन रुका हुआ है। तो हमें अपने संस्कारों को जल्दी से परिवर्तन करना है। महासंस्कार को धारण कर लो। वो कौन सा? देना, महादानी, वरदानी। बीच में 5 मिनट मिले, अपने स्वरूप में टिक जाएं, बीज रूप में। दो प्रकार से आप, 3 प्रकार से दे सकते हैं, सिर्फ यहां बैठकर भी दे सकते हैं। आप यहां स्थित हो गए, अपने प्रकाश को देख रहे हैं बस, तब भी आपके वाइब्रेशंस रेडिएट करते हैं। दूसरा, आप सूक्ष्म वतन में गए, बाबा, संपूर्ण ब्रह्मा, फरिश्ता, आप फरिश्ता, बाबा की किरणें आप में आ रही हैं, और आपसे, आपके सामने एक ग्लोब है और आपसे पूरे ग्लोब में जा रही है। ये दूसरा तरीका है। तीसरा है बीज रूप, कल्प वृक्ष की जड़ें, पूर्वज आत्मा, मैं आत्मा, परम धाम में शिव बाबा के सम्मुख, बाबा की किरणें मुझ आत्मा में समा रही हैं। कल हम इसकी गहराई में चलेंगे, और गहराई में चलेंगे। बाबा की किरणें मुझ में आ रही हैं और मुझसे कल्प वृक्ष के एक एक पत्ते को मिल रही है। बस इसमें आप टिक गए। कोई संकल्प नहीं, कोई चिंतन नहीं, बस बाबा से आपको आ रहे हैं वाइब्रेशन, आपसे एक एक पत्ते तक पहुंच रहे हैं। रहम उत्पन्न करें, चिंतन करें इस बात पर। दुखी हैं आत्माएं, परेशान हैं। देखिए कितने सुसाइड बढ़ रहे हैं, कितना गुस्सा बढ़ रहा है, कितना आक्रोश बढ़ रहा है, कितना टेंशन बढ़ रही है। तो ये रहम। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, उनके दुखों को देखकर खुद दुखी नहीं हो जाना है। ये गलती बहुत आत्माएं करती हैं, दूसरों के दुख को देखकर खुद भी परेशान हो जाती है। ये गलती कभी भी नहीं करनी है। इसके लिए शक्तिशाली स्वरूप रहम कब आ सकता है अंदर? जब आप शक्तिशाली स्वरूप में स्थित हैं। तो रहम के साथ शक्तिशाली स्वरूप तो आएगा ही आएगा। शक्तिशाली आत्मा हूं मैं, सीट पर सेट हूं। जब आप सीट पर सेट होंगे, आपका मन आपके कंट्रोल में है, फिर आप विचार सागर मंथन करेंगे और रहम दिल का भाव उत्पन्न करेंगे अपने अंदर। हर आत्मा के लिए प्यार। सिर्फ 1 मिनट हम चेक करते हैं, बिल्कुल सही चेकिंग करेंगे किसी भी आत्मा, क्योंकि रहम दिल या हमें जो वाइब्रेशन देने हैं, मनसा सेवा करनी है। एक बात जरूर ध्यान रहे कि अगर हमने किसी बात को, किसी भी आत्मा के प्रति कोई भी बोझ अगर पकड़ा हुआ है तो हमारे वाइब्रेशंस नहीं फैलेंगे। तो एक मिनट के लिए चेक करें, अपने स्वरूप में टिक जाएं। चेक करें, मेरे दिल में हर आत्मा के लिए प्यार है, किसी एक आत्मा के लिए भी नफरत नहीं, गुस्सा नहीं, गहराई से चेक करें। किसी से ईर्ष्या नहीं, नफरत नहीं, घृणा नहीं, बदले की भावना नहीं। सूक्ष्म चेकिंग करें। हर किसी के लिए रहम, क्या मैं आत्मा साक्षी होकर हर आत्मा के पार्ट को देखती हूं? 10 में से खुद को कितने मार्क्स दूंगी मैं इसमें? अभी अपने मार्क्स दें। क्योंकि जब तक हमारे दिल में घृणा, नफरत, ईर्ष्या है, तब तक रहम भाव आ ही नहीं सकता। तो रहम भाव उत्पन्न करना मीन्स दिल को साफ करना, और इसके लिए साक्षी और साथी, ये दो वर्ड, जितना हम इसकी गहराई में जाते जाएंगे, साक्षी होकर जैसे बाबा सबके पार्ट को देखता है, मुझे भी वैसा देखना है। और अपनी ऊंची स्थिति में बाप समान, मास्टर भगवान बनकर, तो हमारे अंदर रहम भाव उत्पन्न होगा हर आत्मा के पार्ट को देखते हुए। तो आज एक विशेष प्रैक्टिस करनी है कि हमें महासंस्कार को धारण करना है। वो कौन सा? दाता, विधाता, वरदाता, विश्व कल्याणकारी, रहम दिल। बस देना है हर सेकंड, हर संकल्प, अपने वाइब्रेशन से, अपनी वृत्ति से। तो जब हम महासंस्कार धारण कर लेंगे, ऊंची स्टेज पर स्थित हो जाएंगे, तो बाकी जो भी कमजोरियां हैं, जो कई सालों से खत्म नहीं हुई, स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। हर संकल्प, हर सेकंड सेवा में बिजी हो जाओ, बाबा ने कहा। तो इस पर विशेष गहराई से चिंतन करेंगे और इसको जीवन में धारण करेंगे। ओम शांति। अभी एक मिनट के लिए दिल से प्रतिज्ञा करें। और जो 11 से 12 वाली क्लास है वो दूसरे लिंक पर है, इस लिंक पर नहीं है। वो लिंक आपको भेजा जा रहा है, करण भाई जी की क्लास अटेंड करें। और तब तक दिल से प्रतिज्ञा करें कि मुझे आज जो सुना है वो जीवन में धारण करना है।